प्यार भरे दिल की पहचान है तराने, खामोश इबादत की जुबान है तराने, मोहब्बत इबादत अरदास की पुकारे हैं, दिल का सुकून धड़कनों की तान है तराने।
सुनो तराने नए पुराने,
जिथे एक दूजे दी कदर नहीं, ओ कुग वसदा परिवार नहीं, चेहरे ते बनावट नहीं टिकदी, जे दिल विच पर उपकार नहीं, इंसान बनो ते प्यार करो, बस एहो मुर्शद चाहुंदा है, इंज भगती पूरी नहीं हुंदी जे प्यार नहीं सत्कार नहीं।
ये तराना गवाही दे रहा है कि आज भक्ति संगीत के इस कार्यक्रम में हम कौन सी अजीम शख्सियत से रूबरू हो रहे हैं। जी हाँ, बचित्तर सिंह जी पारस।
जीवन अंदर सादगी दा जे रंग ज्यादा है, रंग ज्यादा है, रंग ज्यादा है, पार सरू दी सुंदरता विच करदा वादा है, करदा वादा है, करदा वादा है, माणक इस गहने दा, माणक इस गहने दा शिंगार जरूर,
पारस पत्थर की बात तो हम अक्सर सुना करते हैं, लेकिन हमारे पारस जी तो सद्गुरु के वो हीरा हैं जिन्होंने जब शब्दों को छुआ तो शब्द रूहानियत की चमक से जगमगा उठे। अगर हम पारस जी की जिंदगी की बात करें तो गिद्दड़बाहा पंजाब वो जगह है जहां पर पारस जी ने जन्म लिया। ज्ञान ने इस हीरे को आकार दिया, समर्पण ने तराशा और भक्ति ने चमक दी। हम सभी जानना चाहते हैं उस प्यार भरे दिल के बारे में जहाँ से इतनी प्यारी प्यारी गजलों का उद्गम होता है, और हम अक्सर इंतजार करते रहते हैं कि कब पारस जी स्टेज पर आएंगे और हमारे दिल के जज्बात बयां करेंगे। आज सदगुरु की कृपा से पारस जी हमारे साथ हैं, तो देर किस बात की, आइए रूबरू होते हैं मिशन के उस्ताद कवि गीतकार शायर बचित्तर सिंह पारस जी से। पारस जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भक्ति संगीत के इस कार्यक्रम में।
शुक्रिया जी, तनंकार जी।
गालिब साहब से माफी मांगते हुए कहना चाहूंगी, हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि पारस का है अंदाजे बयां। और पारस जी, आपके गजलें या गीत जब भी हम सुनते हैं तो कहीं ना कहीं हम उनमें डूबकर भक्ति इबादत की रूहानियत की खुशबू को महसूस कर रहे होते हैं जो कि आपकी गजलों में बह रही होती है। तो ये खुशबू रूहानियत की, ज्ञान की कब आपकी जिंदगी में आई?
वैसे तो हमारे घर में शुरू से ही जब हमने होश संभाली तो पिताजी घर में गीता का पाठ करते थे रोजाना, और सारे परिवार को शाम को इकट्ठा आरती में शामिल करते थे।
अच्छा।
तो मुझे महसूस होता कि तब से ही ये हमारे अंदर भक्ति की जो भावना है पल रही थी।
अच्छा।
हाँ जी। तो आगे चलकर सब इसने अपनी कृपा से ही हमें जोड़ लिया अपने साथ।
अच्छा, तो वो कौन सा दौर था जब आपको सदगुरु के दर्शन हुए, जब आपका रुझान ज्ञान की ओर बढ़ा?
मेरी उम्र उस वक्त थी कोई 12 साल की, तो मैं वर्कशॉप में काम सीख रहा था।
गिद्दड़बाहा में ही?
गिद्दड़बाहा में, हमारी अपनी ही वर्कशॉप थी।
अच्छा।
पिताजी काम करते थे तो मुझको स्कूल से हटा लिया था चौथी जमात से।
अच्छा।
तो मैं वर्कशॉप से एक दिन दोपहर को खाना लेने के लिए घर जा रहा था, तो शहर की एक गली से गुजरना होता था। उस दिन मैं जो चला जा रहा था अपनी मस्ती में, तो देखा सामने एक चारपाई पे चादरें बिछी हुई हैं और एक बहुत ही रूहानी चेहरे वाला महात्मा बैठा हुआ है।
अच्छा।
तो साथ में उनके शायद जीवन साथी थे, और एक नौजवान कुछ बातें बता रहा था, सामने बैठे थे 5-7 लोग। तो जब मैं थोड़ा नजदीक आया तो उनके चेहरे पे नजर पड़ी तो मेरे पांव एकदम रुक गए
अपने आप।
हाँ, तो कुछ सेकंड बाद ही वो महात्मा की नजर मुझ पर पड़ी। वो बहुत ही मीठी मुस्कान से मुस्कुराए और मेरी तरफ देखा। उन्होंने देखा तो मैं आगे कदम नहीं उठा सका, तो वहीं बैठ गया दरी पे जहाँ कुछ और लोग बैठे थे।
अच्छा, ऐसा खिंचाव था उनमें,
ऐसी उनमें जो उनकी मुस्कान में उनके चेहरे पे जो कशिश थी वो मुझे इतनी भागी कि मैं वहाँ से फिर आगे चल नहीं सका, वहीं बैठ गया दरी पे।
जी,
तो वो भी देखते रहे मेरी तरफ, मैं भी देखता रहा।
खिच दे जदों भी दिल नू, खिच दे जदों भी दिल नू, सजना वे प्यार तेरा, सजना वे प्यार तेरा, संता चो कर लई दे, संता चो कर लई दे, सोना दीदार तेरा, खिच दे जदों भी दिल नू। जदों दा तैनू तेरा ही ख्याल रहिंदा, निरंकार रूप तेरा भावें नाल नाल रहिंदा, फुल दा नी रूप फिर भी सोना साकार तेरा, संता चो कर लई दे, सोना दीदार तेरा, खिच दे जदों भी दिल नू, खिच दे जदों भी दिल नू।
पारस जी, आप जिनका दीदार कर रहे थे आप नहीं जानते थे कि वो रूहानी मुखड़े वाले महात्मा कौन है।
हाँ, तो कुछ देर बाद फिर वो उठकर गाड़ी में बैठ गए और चल दिए। तो मैं कई दिनों तक उस चेहरे को दोबारा ख्यालों में लाकर देखता रहा, खुश होता रहा कि वाह क्या जलाल था, क्या नूर था, मैं बस देखता ही रह गया। तो इसी तरह कुछ महीने गुजर गए। हमने वर्कशॉप पे बिजली का कनेक्शन लगवाना था, कुछ इतनी आसानी से नहीं वो हो रहा था काम
जी।
तो ऐसा हुआ कि उन्हीं दिनों में एक निरंकारी महात्मा उस दफ्तर में आ गए और पिताजी ने कई चक्कर लगाए तो उन्होंने देख लिया कि ये आदमी परेशान है, तो उन्होंने बुला लिया अपने पास। उन्होंने पूछा कि भाई साहब आप रोज आते हैं और परेशान भी हैं, क्या बात है। जब उन्होंने बताया कि हमने कनेक्शन लगवाना था लेकिन मुलाजिम थोड़ा परेशान कर रहे हैं, तो उस महात्मा ने, वो ड्यूटी वाले थे जो जेई साहब, उनको बुलाया और कहा कि ये तो बड़े शरीफ आदमी है यार, इनका काम कर दो। तो महात्मा की बात में ऐसा असर था कि उन्होंने वो कनेक्शन लगा दिया। तो दो तीन दिन बाद वो महात्मा वर्कशॉप में आ गए, तो उनके लिए पिताजी ने चाय मंगाई। पिताजी ने उनसे पूछा कि कहिए और क्या सेवा करें।
अच्छा।
तो वो मुस्कुरा कर कहने के सेवा तो आपने बहुत कर दी, हाँ एक सेवा मैं आपको दे रहा हूँ जो आपने करनी है। उन्होंने पिताजी को एक संपूर्ण अवतार वाणी दी और एक संतनकारी पत्रिका। बाद में मैंने वो जब रसाला देखा ना तो उसमें तस्वीर थी बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज की, तब मुझे पता चला कि वो महात्मा जो मैंने देखा था उस दिन।
अच्छा।
वो सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी थे। तो मुझे और भी ज्यादा खुशी हुई क्योंकि वो महात्मा जो बिजली महकमे वाले थे उनका नाम था भगवंत सिंह जी, जो हमारे नजदीकी शहर है मानसा वहाँ से थे। बहुत सी बातें उन्होंने समझाई तो हमें बहुत अच्छा लगने लगा कि मैं तो मिल चुका हूँ इनसे,
बाबा गुरबचन सिंह।
हाँ, तो एक दिन मैं काम कर रहा था तो रेडियो चल रहा था, मैं भी साथ साथ गुनगुना रहा था, तो महात्मा जी पीछे से आ गए, कहने लगे बेटा तुम्हारी तो आवाज़ बड़ी अच्छी है, अगर मैं तुम्हें कुछ गीत दूँ तो सत्संग में गाओगे।
अच्छा।
मैंने कहा जरूर, गाना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। दो दिन बाद एतवार था तो उस दिन मैंने वो गीत गाया, बाबूजी का लिखा था वो गीत,
बाबू गीत का लिखा।
तो वो गीत था गुरु बचन नूरी शहनशाह हे प्यारी राजमा, अड के चोली दर खड़े हां, दे जाओ रहमता। ये गीत जब उन्होंने सुना बहुत अच्छा लगा, बड़े खुश हुए। खुशी मुझे ये हो रही थी कि मैं समय के सतगुरु के सामने कुछ कह रहा हूँ, तो मैं महसूस कर रहा था कि वही चेहरा मेरे सामने है अब।
अच्छा, असर हुआ था आपको देर तक।
मुझे इतना ज्यादा हो गया था ना बाबा गुरबचन सिंह से, जैसे हम मोहब्बत कहते हैं।
अच्छा।
तो श्रद्धा तो बाद में मोहब्बत पहले हो गई थी।
और कहते हैं जैसे मैंने सुना है कि बाबा गुरबचन सिंह जी बहुत खूबसूरत हुआ करते थे।
बहुत खूबसूरत देखते ऐसे थे, उनकी नज़र में जादू था और जिसकी तरफ वो देख लेते थे वो
उनका हो जाता था।
उनका हो जाता था
सचमुच।
फिरे प्यार दी बीन बजाऊंगा रूहानू ए कील बिठाऊंगा, फिरे प्यार दी बीन बजाऊंगा रूहानू ए कील बिठाऊंगा, हर युग दे विच सुनिए आउंदा बदल बदल के बाणा ए कोई नवा नहीं, ए कोई नवा नहीं जोगी बड़ा पुराना, ए कोई नवा नहीं जोगी बड़ा पुराना।
तन भाग होए इस धरती दे जिथे वक्त दा रहबर आया है, इस दुनिया दे हर कोने इने स्वर्ग समान बनाया है,
इस जोगी दिया मिठिया बातां नाए वेखे जाता पाता, इस जोगी दिया मिठिया बातां नाए देखे जाता पाता, वंडते फिरते सीत सुगाता भरे पे खजाना ए कोई नवा नहीं, ए कोई नवा नहीं जोगी बड़ा पुराना, ए कोई नवा नहीं जोगी बड़ा पुराना।
और फिर ज्ञान की बख्शिश कब हुई आपकी जिंदगी में?
ज्ञान की बख्शिश 1968 में,
1968 जिसे हम हिंदी में कहते हैं।
हाँ जी, उस वक्त सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी का एक टूर था जो पंजाब के गांव में ज्यादा था
जी।
तो उस वक्त दास को ड्यूटी मिली थी सतगुरु बाबा जी को पानी पिलाने की स्टेज पर।
अच्छा।
तो मैं जब प्लेट में गिलास रखा, उस वक्त इतने इंतजाम नहीं थे, गिलास ढका भी नहीं था, वैसे ही था खुला, तो दास ने वो प्लेट को पकड़ा कसकर और गिलास को पकड़ा।
अच्छा।
क्योंकि खुशी इतनी हो रही थी कि कांप रहे थे हाथ
कि बाबा जी को पानी पिलाना।
हाँ। जब मैंने थोड़ा नजदीक जाकर बाबा जी की तरफ देखा तो फिर निगाहें झुक गई, वो प्लेट और गिलास बाबा जी के आगे कर दिया लेकिन अपना हाथ छोड़ा नहीं गिलास से।
ये भी कमाल रहा।
तो बाबा जी ने मेरा हाथ ही पकड़ लिया, तो फिर याद आया, फिर मैंने अपना हाथ धीरे धीरे खींचा और बाबा जी ने पानी पिया और मुस्कुरा कर वो प्लेट में गिलास रख दिया।
ये भी बाबा जी का अपना बनाने का एक तरीका था।
हाँ जी, राजमाता जी भी मुस्कुरा रहे थे बड़ा प्यार से। तो फिर बाद में दूसरा गिलास मैं उनके लिए लेकर गया। तो उसी दिन उसी टूर में हमारे एक महात्मा वो चल रहे थे साथ में टूर में, तो उनसे उस दिन ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया
जी। क्या उम्र रही होगी आपकी
उस वक्त? थी 14 साल।
अच्छा।
12 साल की उम्र में दर्शन हुए बाबा जी के, 14 में फिर ब्रह्म ज्ञान की दात मिली। और उसी दिन की वो जब बाबा जी ने छुआ मेरे हाथ को पकड़ा और मुस्कुराए, उसी घटना पर आगे जाकर 2 साल बाद मैंने एक गजल लिखी थी, वो थी
दुनिया बदल गई मेरी तेरे मुस्कुराण ते, तेरे जहान वेखिया दाता जहान ते, मैं तेरिया इनायता की बयान कर सकां, की बयान कर सकां, जर्रे बिठाए साहेबा, जर्रे बिठाए साहेबा, तू आसमान ते तेरे जहान वेखिया दाता जहान ते।
बहुत खूब, बहुत खूब।
ये रचना सी।
और फिर बचित्तर सिंह जी के पारस बनने का सिलसिला कब शुरू हुआ? कब से गीत और गजलों से राब्ता हुआ आपका?
पारस बनने का जो हुआ सिलसिला, तो मेरे टीचर की एक गजल थी लिखी हुई, तो एक दिन मैंने उनसे सुनी सहज में, तो मैंने कहा ये गजल मुझे दे दो, मैं इसकी तर्ज बनाऊंगा और कल आपको सुनाऊंगा।
आप छोटे थे तभी?
हाँ। तो कला अंदर निरंकार ने भर दी थी, क्योंकि बचपन से ही मुझे गीत सुनने का, रेडियो सुनने का बहुत शौक था
जी।
तो मैंने उस गजल की ट्यून रात में सोचते हुए, इतनी सुंदर बन गई ट्यून, सुबह मैंने जाकर उनको सुनाई, बहुत खुश हुए।
अच्छा।
और फिर टीचर ने मुझे कहा कि तुमने मेरी गजल को ऐसे बना दिया जैसे लोहे को पारस छू ले तो सोना बन जाता है लोहा। इसी तरह से तुमने मेरी गजल को इतना अच्छा बना दिया, आज से तुम्हारा नाम भी पारस ही रख देते हैं।
वाह,
तो उन्होंने ये तखल्लुस दिया मुझे पारस।
तेरी दीद देने ने सवाली, मैं हुर कुछ नहीं सकना, मैं हुर कुछ नहीं सकना, चोली अखियां भी पर देओ खाली।
तो इसका मतलब कि पारस जी के बनने के पीछे बाबा गुरबचन सिंह जी का इश्क था, है ना?
हाँ जी, बाबा जी को जब भी मैं अपने ख्यालों में लाता था तो कोई कोई शब्द अंदर से निकलते थे, लेकिन लिख नहीं पाता था। फिर 72 में आकर ये गजल लिखी थी कि दुनिया बदल गई मेरी तेरे मुस्कुराने से।
तो आप बाबा गुरबचन सिंह जी के मोहब्बत में आपने लिखना शुरू किया।
हाँ।
हम कह सकते हैं उनकी मोहब्बत ने आपसे लिखाना शुरू किया।
हाँ।
और ऐसा सुनते भी हैं कि शायर तो मोहब्बत में ही बनते हैं।
यहाँ भी मोहब्बत तो मुझे भी हुई, एक अलाही सूरत थी उससे हुई और उसी की याद में मैं शायर बना। तो ऐसे ही
वो थे बाबा
गुरबचन सिंह जी
महाराज जी।
चर्चा जदों भी तेरी छिड़ दिए मेरे मुर्शिद,
चर्चा जदों भी तेरी छिड़ दिए मेरे मुर्शिद,
सुन सुन के रूप तेरी छिड़ दिए मेरे मुर्शिद,
सुन सुन के रूप तेरी छिड़ दिए मेरे मुर्शिद।
ओदो मो बड़ा ही आउंदा, ओदो मो बड़ा ही आउंदा, सचमुच ओ यार तेरा, सचमुच ओ यार तेरा, संता चो कर लईदा, संता चो कर लईदा, सोना दीदार तेरा।
आपकी आवाज पारस जी जब भी हम सुनते हैं तो मुझे लगता है जैसे किसी मंदिर में शंख बज रहा हो या दूर कहीं इबादत की पुकार उठ रही हो, ऐसा मुझे लगता है। तो इस मिठास के पीछे क्या राज है?
बस वही इश्क व मोहब्बत, क्योंकि जब भी मैं कोई कविता या गीत बोलता हूँ तो ख्यालों में सतगुरु सहज में ही आ जाते हैं।
अच्छा।
तो जब सतगुरु इतने सहज में बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं तो मैं गीत बोलता हूँ तो ऐसे ही लगता है कि मैं उनकी बात कर रहा हूँ, और जब उनकी बात करेंगे तो मीठी तो होगी ही।
जी हाँ, तो इस मिठास के पीछे भी गुरु का इश्क है।
हाँ जी हाँ जी,
मीठा मीठा बोल दी जुबान चंगी हुंदी, कन्नी रस खोल दी, कन्नी रस खोल दी, मिठा मिठा बोल दी जुबान चंगी हुंदी, मिठा मिठा बोल दी जुबान चंगी हुंदी सजना।
ऐसे बोल के अर्थ जिना दे, रख देवन कोई पाड़ा पाके, पारस ऐसा बोलन नालों बेहतर है के चुप कर जाइए।
रंग भावे काला पर बोली है कमाल दी, किसे भी पखे रूच नी खिच जी दे नाल दी, इसलिए ता कोयल दी, इसलिए ता कोयल दी पछाण चंगी हुंदी है। मिठा मिठा बोल दी जुबान चंगी हुंदी है।
बहुत खूब पारस जी, शुरू से ही आपका अंदाज तरन्नुम वाला था?
शुरू से ही, क्योंकि मैं 7-8 साल की उम्र में ही गुनगुनाने लगा था, और जब लिखने लगा तो कोई रचना ऐसे नहीं पड़ी, सहज में तरन में ही पड़ी, क्योंकि कवि सभाओं में भी दास बहुत गया।
अच्छा।
गजलें पड़ी वहाँ भी इसी तरन में पड़ी, और सब खुश हो जाते थे कि आपने तो मुशायरा लूट लिया।
अच्छा।
ऐसी
जरूर
बातें अक्सर सुनने को मिलती थी बाहर से।
सोच दे हाँ के जेकर तेरी रहमत दी सिर शाना हुंदी, मेरे वर्गे बंदियां दी फिर दुनिया विच कोई थां ना हुंदी। कौन जान दे केड़े राही केड़े हाल च रुल दे हुंदे। ए मंजिल कद मिलदी पारस जे तेरे हाथ बाना हुंदी। जे तेरे हाथ बाना हुंदी।
आपके तरन्नुम की एक खास लय है जो सीधे दिल में उतरती है सुनने वालों के। तो इस खास कंपोजिशन के पीछे क्या राज है, क्या कहानी है और ये कहाँ से आई?
ये बचपन से ही जो मैं गीत सुनता था ना दास रेडियो पर
जी,
एक यही धुन थी, यही राग था जो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता था। और जब मैं टीचर से संगीत सीख रहा था उन्होंने भी जब ये राग मुझे सिखाया तो मुझे बहुत ही आनंद आया। जब मैंने स्टेज पे पहली बार कविता बोलनी चाही इसी राग पे थी और महात्मा बड़े खुश हुए कि इतना अनोखी आवाज, अनोखा तरन्नम, सब कुछ अनोखा था
जी,
तो और सतगुरु जब मेरे दिल में बसा था इसलिए
जी। जिस तरह से आपके दिल में सतगुरु उतर गए थे इसी तरह से पारस जी आप भी सुनने वालों के दिलों में उतर जाते हैं। आपसे गुजारिश करूंगी कि कुछ पंक्तियां आप अपने इसी तरन्नम वाले अंदाज में सुनाई।
ना सौड़ी सोच ना तंग नजरी ना नफरत दे तूफान आंधी है लोड़ ता बस हुण दुनिया नू कुछ मोपजिया मुस्काना दी। बीमार मनुखता सहक रही केरी है अनेका मरजाने हुण नौ बर नौ इसनू करने मर्जी है इना लुकमाना दी। पारस पत्थरां दी लोड़ है की जो बोझ दा कारण बन देने जो रूप निखारन धरती दा है लोड़ ओना इंसाना दी।
बहुत खूब कमाल। ये इतना खूबसूरत कलाम और इतनी दिलकश आवाज़, इसके पीछे किसकी प्रेरणा रही होगी, किसका प्रभाव रहा होगा इन गज़लों पर?
जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा वो हमारे उस्ताद जनाब दीपक जैतोई।
अच्छा।
जो पंजाबी गज़ल के महान शायर, उर्दू शायरों ने इनको कहा था कि पंजाबी में गज़ल लिखी ही नहीं जा सकती, कोई असर नहीं आ सकता पंजाबी भाषा
जी। बिल्कुल। और हमने ज्यादातर गजलें उर्दू जुबान में ही सुनी।
हाँ, तो उस हमारे उस्ताद शायर ने बहुत मेहनत की पंजाबी गजल पर और लिखी भी बड़ी अच्छी, और तब से अनेकों शायर पंजाबी गजल लिखने लगे। तो दास को भी उनका आशीर्वाद मिला, लिखने का जो तकनीकी असर था उनसे लिया, और जो मिठास, जो असर बात कहने का, और जो मोहब्बत और
इश्क
इंसानियत का, इश्क का जो रंग था वो सतगुरु बाबा जी से मिला।
और आपने ना केवल पंजाबी भाषा में इतनी प्यारी प्यारी गजलें लिखी बल्कि आपने उसमें भक्ति इबादत के रंग भी भरे हैं, तो ये एक नायाब कला है आपकी
सतगुरु की कृपा से
जी।
एह सतसंग साडा शीशा है, एह सतसंग साडा शीशा है, तक तक के संवर दे जाना है। शैतानी सोच दी दल दल चों बच बच के गुजर दे जाना है। यह सतसंग साडा शीशा है। नफरत वैर दे कंडियां चों कन्नी कतरा के लंघ जाना, कन्नी कतरा के लंघ जाना। जिथे प्यार वफा दी गल होवे, जिथे प्यार वफा दी गल होवे उस थां ते ठहर दे जाना है। एह सतसंग साडा शीशा है।
बाबा गुरबचन सिंह जी से जुड़ी कोई याद कोई बात जो अभी भी आपके ख्यालों में हो?
हाँ, एक घटना हुई थी कि हम दिल्ली आए थे, दो जने थे हम
जी।
कुछ सामान लेना था वर्कशॉप का, तो रात हम इधर नंकारी कॉलोनी कोठी में रुके, तो शाम को बाबा जी बैठ जाते थे चेयर पे, शर्मा जी साथ में होते थे, तो जो भी बाहर से आए होते थे महात्मा उनसे बाबा जी खुद हाल चाल पूछते थे, कहाँ से आए, कैसे आए, क्या काम दिल्ली में। तो उस दिन पहले हरिमोहन शर्मा जी ने पूछा था, हाँ जी आप कहाँ से आए?
हाँ।
तो दास ने कहा दास गिदड़वाह से है, पंजाब से। उसी वक्त बाबा जी ने सवाल किया पंजाबी में, कहने की करदे हो उत्थे? दास ने कहा जी के दास वेल्डिंग दा काम करदा है इत्थे वर्कशॉप। बाबा जी ने फिर सवाल किया कि होर की करदे हो? होर दास ने सोच के फिर किया, बाबा जी दास गीत लिखदा है संगत बोलन वास्ते। बाबा जी ने फटाफट सवाल कर दिता कि सुनाओ फिर कोई। दास अगों उठ के बाबा जी चेयर दे नजदीक जाके ओही रचना जो दास सुना चुके थानू कि दुनिया बदल गई मेरी तेरे मुस्कुराण ते, तेरे जिहा नहीं वेख्या दाता जहान ते, सारी गजल सुन के बाबा जी बड़े प्यार ना मुस्कुरा रहे सी, देख रहे सी, और दास नू बहुत ही खुशी और नशा जय हो गया। दास ने बाबा जी दे नेड़े होके कहा कि बाबा जी ये रचना ठीक सी, और बाबा जी उन्हें हौली जी आवाज विच बोले कि तुहाडे गीत पूरी दुनिया सुनेगी,
आशीर्वाद मिल गया।
जीवन दी जाच सिखाउंदी बाणी गुरुदेव दी, सुते होए पाग जगाउंदी बाणी गुरुदेव दी, जीवन दी जाच सिखाउंदी ए। सिख दे कन रहण तरस दे सतगुर ते बोला नू, हां बोला नू देने हंस हमेशा मोती अणमोलान अणमोलान, कावां तो हंस बनाउंदी कावां तो हंस बनाउंदी बाणी गुरुदेव दी, सुते होए पाग जगाउंदी बाणी गुरुदेव दी, जीवन दी जाच सिखाउंदी।
आपका जो कलाम है वो प्रेम प्रधान है, भाव प्रधान है, और साथ ही इसमें विरह का भी असर मिलता है जो सीधे सुनने वालों के दिलों में उतरता है। ये विरह वेदना कब से आई?
ये विरह वाला असर वो तब आया जब 1980 में सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी से शारीरिक रूप में बिछड़ने का समय आया। वो जो कमी थी ना वो अंदर ही अंदर बहुत कसक पैदा करती थी
जी, और वो कहीं ना कहीं आपकी गजलों में उतरती थी।
हाँ, ऐसे ही था वो, अभी है इसीलिए वो कहीं ना कहीं आ जाता है।
एक रीझ सी चिरां दी तेरा दीदार होवे, तेरे चौन वालियां विच मेरा शुमार होवे, जेड़ा भी चेहरा वेखा तेरा ही अक्स जापे, पारस मेरी नजर विच तेरा खुमार होवे, पारस मेरी नजर विच तेरा खुमार होवे।
तो जब बाबा हरदेव सिंह जी का दौर आया तो उसमें कुछ परिवर्तन कुछ बदलाव हुआ आपके कलाम में?
हाँ, तो होता ही रहा जैसे जैसे समय गुजरता रहा। असल में तो वही असर था ना
जी,
जब इनके चरणों में पहली बार एक गजल पढ़ने को समय मिला।
बाबा हरदेव सिंह जी के?
हाँ, हरदेव सिंह महाराज साडे इलाके च आए सी
जी,
तो उत्थे एक समागम हो रहा सी ते दास गया।
अच्छा।
स्टेट सेक्रेटरी को दास ने क्या रचना बोलनी, उन्होंने एकदम ना कर दिती कि बाबा जी सामने बोलना है, कुछ चंगे चंगे बुलारे बोलणगे। तो दास स्टेज सेक्रेटरी के सामने बैठ गया और दिल चो एक जैसे आह निकलती है। बाबा जी तरफ देख कर मैं अंदरों अंदर किया कि बाबा जी तुसी एक बार किया सी कि तुहाडे गीत पूरी दुनिया सुनेगी।
हाँ, उस रूप में कहा था।
हाँ, तो यहाँ तो अपना परिवार ही नहीं सुन रहा। तो उसी वक्त स्टेज सेक्रेटरी ने मुझको बुला लिया कि क्या बोलना था, मैं गजल बोलनी, ठीक है तैयार हो जाओ। तो दास ने फिर उस दिन बाबा हरदेव सिंह के सामने पहली बार वो गजल बोली।
हाँ।
उस वक्त जो तरनम निकला वो अलग से ही था।
अच्छा।
गीत तेरी प्रीत दे
गाँधी रही जिंदगी सुरताल विच आंदी रही गीत तेरी प्रीत दे गाँधी रही ना जदों तक मिलिया तेरा थों पता ना जदों तक मिलिया तेरा थों पता पागलां वांगू नजर पौंदी रही शुक्र है पारस तू अज अपना ले एक जमाना औंसियां पौंदी रही एक जमाना औंसियां पौंदी रही
कमाल कमाल।
तो वो जो समा था ना उस वक्त ठहर गया था समागम पंडाल में इतनी शांति हो गई और मुझे भी लग रहा था जहाँ तो मैं हूँ बोलने वाला या फिर सुनने वाला बैठा है और कोई नहीं बाबा जी एक टक देखते रहे
जरूर ऐसा हुआ होगा।
और जब मैं बैठा सामने तो दिलबाग जी आ गए कहते बाबा जी ने कहा है वो कागज भी दे दो और उस पर अपना एड्रेस भी लिख दो।
अच्छा
तो वो कागज अगले महीने में वो रिसाले में छपी गजल और बाबा जी ने कवि दरबार के प्रबंधकों को वो दिया एड्रेस के इस एड्रेस पे अपने चिट्ठी भेजनी है कि ये कविता बोलेंगे समागम में।
ये गुरु और गुरसिक का एक अनोखा रिश्ता यहाँ पे देखने को मिला।
रिश्ता मनुखता दा टुटना नहीं चाहिदा रिश्ता मनुखता दा टुटना नहीं चाहिदा वो वाला पल्ला हथों वो वाला पल्ला हथों छुटना नहीं चाहिदा
रिश्ता मनुखता दा टुटना नहीं चाहिदा रिश्ता मनुखता दा
टुटना नहीं चाहिदा।
इतने प्यारे प्यारे गीत और गजलें हैं आपकी कि कहना मुश्किल है कि इनमें से कौन सबसे अच्छी है। आप ही बता दीजिए कि आपके दिल के करीब कौन सी है।
सबसे ज्यादा करीब तो यही गजल की तेरी प्रीत दे गाँधी रही। और भी अनेकों हैं। एक गजल थी जब समागम में समस्या थी ना उसमें दो शेर थे वो शेरों पे जो बाबा जी ने आशीर्वाद दी ना मुस्कुरा कर वो कभी ना भूलने वाला क्योंकि बाद में सीडी रिलीज हुई तो देखा उसमें बाबा जी इतना प्यार दे रहे हैं।
अच्छा।
वो कभी भूलते नहीं दो शेर वो शेर था एक पहले मेरा प्रीतम मेरी गली विच आया नी मैं सदके जावा मेरा प्रीतम मेरी गली विच आया नी मैं सदके जावा वजनी चांजरे प्यार दी लेते गीत मिलन दे गा शहनाईए। तो अगले शेर में फिर बाबा जी की एक खासियत पेश की थी
जी
शांत सुभा मुस्काना वंड दे बोले ता मोती किर देने पलक चपकनी भुल जाई दी जी कर दे बस वेखी जाई। और ऐसे से शेर हर बार हर गजल में हो जाते थे
बाबा हरदेव सिंह जी के रूप के
और रूप के और उनकी खास जो बातें हैं जैसे एक बार उनके चरणों पे शेर बना कि सजरे सुरख गुलाबा वरगे चरना दी आभाते वेखो सजरे सुरख गुलाबा वरगे चरना दी आभाते वेखो बदल जांदिया सब तकदीरां जद मस्तक एक बार सुहाइए।
बहुत खूब बहुत खूब। तभी तो सुनने वालों को लगता था कि जैसे आप उन्हीं के दिल की बात कर रहे हो तो बाबा जी की मोहब्बत वो आपके शब्दों से बयां हो रही थी। और कई बार स्टेज पर जब होते थे मैं भी होती थी तो मैं भूल जाती थी कि मुझे भी पढ़ना है इस तरह से आपके जो कलाम होते थे उसमें खो जाती थी।
ये सतगुरु की कृपा से। एक बार जब बाबा जी का 50वां जन्मदिन था ना
जी,
तो उस वक्त अचानक ही मेरे दिमाग में आई कि बहुत से महात्मा हो गए अनगिनत, तो क्यों ना इस बार उर्दू में बोला जाए।
अच्छा,
तो मैंने गजल लिख ली।
उसमें पंजाबी नहीं लिखा
ना?
अच्छा,
उर्दू में सारी गजल
जी।
तो जब मैं यहाँ तो मान सिंह मान जी को सुनाई, कहना यार एक ही तो कमाल करता, मैंने तो पता नहीं तू इस भाषा च भी लिखना जानता, भाई कमाल था सतगुरु का निरंकार था। तो जब स्टेज पे बैठे थे ना
जी,
तो गजल तो पूरी हो चुकी थी, लेकिन वहीं बैठे बैठे एक शेर आया और वो शेर सबको याद हो गया, बाकी गजल चाहे याद ना रही हो
ये भी खूब रही।
हाँ, वो शेर था कि पूज्य माता जी को मैंने संबोधन करके सुनाया था
जी,
कि पूज्य माता जी देखिए तो हो गए 50 के अपने मियाँ, क्योंकि हम तो सारी रूह है मियाँ, तो वही
जी हम सभी को याद है।
देखिए तो हो गए 50 के अपने मियाँ, सोचिए तो है अभी 24 के बिल्कुल जवान।
वाह,
और इतनी ताड़ियां आत्मा ने मारी, 2-3 बार बोला शेरे
जी।
तो ये एक रूह की आवाज थी कि ये 50 के नहीं, अभी तो हमारे 24 के ही है, क्योंकि 26 साल की उम्र में तो हमारे सामने प्रकट हुए थे। तो उसी दिन विचार में फिर बाबा जी ने, जैसे उनकी एक खास अदा थी
जी,
शर्माते हुए कहा कि अभी उम्र का जिक्र हो रहा था, मुझे तो पता नहीं चला कब ये 26 से 50 हो गया।
क्या बात है,
वो भी बड़ी आनंद की घड़ी थी
जी, बहुत आनंद की घड़ी हुआ करती थी।
जीवन दे विच हर एक गुण ता होना चाहिए,
होना चाहिए, होना चाहिए,
हर सेवा दा जज्बा सोना सोना चाहिए,
सोना चाहिए, सोना चाहिए,
संता वाला शानदार, संता वाला शानदार किरदार जरूरी है, किरदार जरूरी है,
भगती दे विच हो
तो कभी ऐसे सद्गुरु बाबा जी से रूबरू होने का मौका मिला?
हाँ, कई बार
जी
ऐसा हुआ कि दास आया था कोठी में, कुछ काम था, तो जब चलने लगा ना वहाँ से, तो खन्ना में था दास उस वक्त, तो वहाँ एक महापुरुष थे, उन्होंने मुझे ना एक चश्मा दिया
जी,
कि मैं गया था मंसूरी बाबा जी को भेंट करना था, तो मेरा हौसला नहीं पड़ा।
अच्छा,
तो आप जा रहे हो दिल्ली, आप तो चले जाएंगे अंदर, ये बाबा जी को दे देना। तो दास आया, आते ही पूछा रिसेप्शन से, वो कहते भी आज तो कोई प्रोग्राम नहीं नमस्कार का या मिलने का, कल देखेंगे। तो लंगर वगैरह शका ना धोकर अचानक खबर मिल गई कि राजमाता जी बैठे हैं, उनके चरणों पर नमस्कार हो रही।
अच्छा,
तो दास फटाफट अंदर आया, लाइन में लगा, तो दास सोचने लगा कि उस महापुरुष ने कहा था कि बाबा जी को देना है चश्मा।
अच्छा,
कि माता जी है, दे देंगे बाबा जी को, काम तो पूरा हो ही
है।
ये मैं सोच ही रहा दिल में कि बाबा जी अंदर से
आगे
आगे गेट खोल के दरवाजा कमरे का तो बराबर खड़े हो गए, उधर हलचल मच गई महापुरुषों में, बाबा जी आ गए, बाबा जी आ गए। तो जब दास ने नजदीक पहुंचा तो दास ने कहा, सच्चे पातशाह आपके गुरसिख ने ये चश्मा भेजा है आपके लिए। तो बाबा जी, क्योंकि ऊपर वाले फर्श पे खड़े दास, 2 पौड़ियां नीचे था, तो दास ने कहा कान में कि ये आपके गुरसिख ने चश्मा भेजा है आपके लिए। तो बाबा जी ने पकड़ा, पैकिंग से निकाला, ऐसे लगाया और मेरी तरफ ऐसे देखा मुस्कुराकर।
अच्छा,
और जैसे पूछ रहे हो कि जच रहा है
जी।
तो दास ने चरणों पे सर रख दिया, तो उसी वक्त दिलबाग जी आ गए, आ जाओ कहते एक गीत भी सुना दो
आपसे।
हाँ,
अच्छा।
तो गीत मैं रास्ते में ही लिखा था मैंने, तो वो ही सुना दिया।
कौन सा गीत था?
वो था लू लू दे विच घर घर बैठा प्यार सजन दा।
गा के सुनाइए।
लू लू दे विच घर घर बैठा प्यार सजन दा, अखां लोचदियां सी बस दीदार सजन दा, साडा दिल ही नाजुक है घबरा जांदा है, साडा दिल ही नाजुक है घबरा जांदा है, पूरा हुंदा है हर वारी इकरार सजन दा, पूरा हुंदा है हर वारी इकरार सजन दा।
इस बेहद खूबसूरत ख्याल के बाद एक गीत सुन लेते हैं आप ही का लिखा हुआ।
ए मिशन मनुखता च प्यार भरी जा रहे है, ए मिशन मनुखता च प्यार भरी जा रहे है, धरती ते देवते धरती ते देवते धरती ते देवते तैयार करी जा रहे है, ए मिशन मनुखता च प्यार भरी जा रहे है, ए मिशन मनुखता च प्यार भरी जा रहे है।
इतने प्यारे प्यारे गीत, कमाल के गजलें, क्या कोई ऐसा भी गीत है जो आपके जहन में अक्सर रहता हो?
तो एक गीत आपने लिखा था पहले
जी,
कई साल पहले, उसमें एक अंतरा था कि नैणा दिया कोया विच हंजू आके बैठना, लोकी मैनू बिरहा दी मारी हुई कहना, एक कुल्ली तेरी चंगी मैं चुबारा छड़ आई हाँ, तेरी हाँ मैं तेरी जग सारा छड़ आई हाँ। तो वो गीत बस अब भी जब सोचते ना तो वही अंतरा सामने आ जाता है कि तो ये भी मेरे दिल के बिल्कुल करीब ही नहीं, दिल के अंदर ही रहता है ये गीत भी हर पल। ये गीत लिखा था रास्ते में ट्रेन में जाते हुए,
अच्छा।
बम्बई समागम था तो बहनें थी 10-12 साथ में, बड़ा खुश हो रही थी, गीत गा रही थी बाबा जी कि इतनी खुशी मिल रही है हमें, कहीं इस खुशी में कहीं कमी ना आए,
डर लगा था।
हाँ। उसमें एक अंतरा ये भी था कि पांच मेरे भाई एक होमे मेरी माँ सी,
अच्छा,
बाहों फड़ फड़ मैनू खिंचते पिछा सी, उन्हों का मैं लारा ते सहारा छड़ आई हाँ, तेरी हम तेरी जग सारा छड़ आई।
वाह, बहुत ही खूबसूरत ख्याल। आप ही का एक और ख्याल सुनते हैं गीतों में पिरोया हुआ।
जाते आ कर्म कमामी खैर साड़ी चोली पामी, ये जग दे दाता तेरिया ही रहमता ते मान है, जाते आ कर्म कमामी साड़ी चोली पामी, ताते आ कर्म कमामी खैर साड़ी चोली पामी, ये जग दे दाता तेरिया ही रहमता ते माण है।
बाबा गुरबचन सिंह जी के समय में सदगुरु से इश्क हुआ और ख्याल उतरने लगे। बाबा हरदेव सिंह जी की छत्र छाया में वो ख्याल फूले फले, और फिर जब माता सविंदर जी का युग आया तो किस तरह के ख्याल आए?
वही गजल के, सतगुरु दी सोच लेके सोचा श्रृंगार लई, दुनिया संवर ही जानी खुद नु संवार लई, ऐसे ऐसे गीत कई आए
जी।
समालखा में जो भक्ति पर्व हो रहा था वहां भी जो कविता, उसमें एक शेर था कि सच्चे पातशाह अरदास है हमें भक्ति दो, लेकिन हम मांगते ये हैं कि आप खुश रहो, मुस्कुराते रहो
जी,
हम आपको देखकर बस खुश होते रहें।
सतगुरु दी सोच लेके सोचा श्रृंगार लईए, दुनिया सवर ही जानी, दुनिया सोचा शिंगार लईए, दुनिया सवर ही जानी, दुनिया सवर ही जानी, खुद नो सवार लईए, सतगुर दी सोच लेके सोचा
एक ख्याल आ रहा है कि इतना लंबा सफर रहा आपका मिशन में, भक्ति में, और इतने खूबसूरत गीत और गजलें आपने लिखी। तो अगर आप भक्ति के बारे में सुनने वालों को कुछ कहना चाहें, भक्ति क्या है, समर्पण क्या है सदगुरु के चरणों में?
समर्पण तो इसी तरह होगा कि सदगुरु का हर वचन सुनकर
जी
अपने अंदर उतार लिया जाए और उस पर अमल किया जाए। यही जरूरी है भक्ति के लिए, क्योंकि इस युग में जो कुछ हो रहा है दुनिया में, हमारे चार आले दुआले में, चौगिरदे में बहुत कुछ भागदौड़ हो रही है, लेकिन भक्ति में ये भागदौड़ बिल्कुल भी नहीं चलती। यहाँ तो सहज भाव से समर्पित होकर सतगुरु के वचनों को मानकर ही भक्ति में हम कुछ ना कुछ असर ला सकते हैं
जी,
सतगुरु की कृपा से। और भावुकता जरूरी है, ऐसे नहीं कि बात सुन ली, थोड़ा आनंद ले लिया और फिर आगे बढ़ गए।
भाव जरूरी है।
हाँ, सतगुरु के भावों को, वचनों को अंदर रखकर उनके बारे में सोचना पड़ेगा कि सतगुरु क्या चाहता है और हम कैसे उस बात को निभाएं, यही भक्ति है
जी। तो अगर हम आज की बात करें पारस जी, आज सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हमारे सामने हैं, हमारे रहनुमा हैं, तो इनकी रहमतों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप?
दस मैं जुबानों की कहा तू ता दिला दिया जान दे, बोले बिना पर किंज रहा तू ता दिला दिया जान दे, नाल तेरे प्रीत दी हुन सांझ निभ जाए मेरी, रास आ जान शोहरता तू ता दिला दिया जान दे, मैं नालायक सा तेरी एक शो मिली लायक होया, नाच तारी खामियां तू ता दिला दिया जान दे, है करम तेरा के तू पारस दी चोली पाए ने, कलम जज्बे ख्वाहिशां तू ता दिला दिया जान दे।
वाह, तो इस रूप में भी सदगुरु ने आपको रहमतें और प्यार दिया। आज अगर हम सदगुरु माता जी के चरणों में अरदास करें तो किन शब्दों में करेंगे, क्या मांगे?
हम प्रार्थना ही करेंगे कि सदगुरु माता जी हमें आपकी हर बात पर यकीन हो जाए और उसको मानना हमारा जो धर्म है वही बना रहे, आपके किसी वचन से इधर उधर ना हो और आपकी शरण में रहकर आपके वचनों को मानकर जिंदगी का सफर करते रहें, यही तमन्ना है।
पारस जी, यही अरदास करूंगी, प्रार्थना करूंगी सदगुरु के चरणों में कि सदगुरु आपकी लेखनी में दिन ब दिन और बल बख्शें, ताकत बख्शें और पारस जी और ऊंचाइयां पाते रहें। इसी शुभकामना के साथ अब हम आखिरी पड़ाव पे पहुंच गए हैं भक्ति संगीत के इस सफर के। तो आप भक्ति संगीत के इस कार्यक्रम में आए और आपने इतनी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें और सदगुरु की रहमतें हमारे सुनने वालों के साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, आप जी का भी धन्यवाद जी।
धन्यवाद जी।
मैं एक दिलों विच पर दी जावे, मैं एक दिलों विच पर दी जावे, मैं एक दिलों विच पर दी जावे, आओ ऐसी गल करिए, सतगुर दा आदेश है आओ शरदा नाल अमल करिए, मैं एक दिलां विच पर दी जावे, चोली अड के रब तो सब दियां खैरा मंग लीए, भगती प्यार च अपने सारे तन मन रंग लीए, सारे तन मन रंग लीए, सब दे पले दी तुरे अंदरों ही, सब दे पले दी तुरे अंदरों ही, अरजोई पल पल करिए, मैं एक दिलां विच पर दी जावे महक दिलां विच भर दी जावे आओ ऐसी गल करिए सतगुर दा आदेश है आओ शरदा नाल अमल करिए महक दिलां विच भर दी जावे।